ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री गौरनिताई की, श्रील प्रभुपाद की, श्री वृंदावन धाम की, श्री रमण रेती धाम की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सौ आठ वनों में से भगवान को 12 वन बड़े प्रिय हैं और उन 12 वनों में श्री वृंदावन धाम बहुत प्रिय है। तो अभी हम श्री वृंदावन धाम आए हैं और वृंदावन धाम में भी वो हिस्से में आए हैं जिसको रमण रीति कहते हैं। रमण रीति का मतलब यह है कि जिस रीति में कृष्ण बलराम रमण करते हैं, मतलब आनंद लेते हैं। और रीति किसकी है, बोलो बोलो बोलो, रीति कहाँ होती है? रीति जमुना किनारे होती है, तो ये जमुना किनारा है। वैसे जमुना जी बहुत पास बहा करती थी, पिछले 50 साल में बहुत दूर चली गई है, उसका पात्र बहुत सिकुड़ गया है। तो रमण रीति इसलिए कहा गया क्योंकि जमुना जी यहाँ बहती थी और कृष्ण बलराम इस वालू में खिला करते थे। करीब करीब 40-42 साल पहले श्री प्रभुपाद जी ने जब यहाँ जगह लिया था तब यहाँ पर पूरा जंगल था, फॉरेस्ट, इतना घना जंगल था कि यहाँ से राधा कुंड 28 किलोमीटर है। पूरे रास्ते पर कहीं भी सूरज की किरण जमीन पर नहीं टिकती थी, सच थिक फॉरेस्ट। लोगों ने बताया प्रभुपाद जी को, आप यहाँ पर मंदिर को खोल रहे हैं, जो जंगल में जगह क्यों ले रहे हैं? तो शेर आते यहाँ पर, शेर आया करते उस समय यहाँ पर। तो उन्होंने कहा था कि मुझे विश्वास है कि ये ऐसी जगह बन जाएगी जहाँ पर हजारों लोग आएंगे, दिस इज हिज विजन। बम्बई में जगह लिया था तो भी बम्बई तब बांद्रा तक ही थी, बहुत पुरानी बात है, बांद्रा के आगे जंगल था और शेर आया करते थे वहां पर। तब भी लोगों ने कहा था कि आप जुहू में क्यों खोल रहे मंदिर, जगह लेकर यहां पर क्यों बसे, तो बहुत घनकर भयंकर जगह है, यहां पर डकैती होती है, डाकू लोग आते हैं, और आज जुहू का क्या पोजीशन है? ऐसा है, जहां जहां भी प्रभुपाद जी गए वहां पर जंगल में मंगल हो गया। तो इस तरह से इस रमण रीति स्थान में कृष्ण बलराम खेलते हैं अपने भाइयों, अपने दोस्तों के साथ गौचारण करते हैं, आनंद लेते हैं। तो इसी क्षेत्र में ये मंदिर बसा हुआ है, क्योंकि रमण रीति है इसलिए यहाँ पर कृष्ण बलराम की मेन मूर्ति है, क्योंकि कृष्ण बलराम की भूमि है ये। नहीं तो हर मंदिर में प्रधान मूर्ति राधा कृष्ण की होती है, लेकिन राधा कृष्ण बाजू में खड़े हैं, उनका नाम है राधा श्याम सुंदर जी, बीच में है राधा, बीच में है कृष्ण बलराम जी, और लेफ्ट में सबसे जो है वो, जैसे मैंने कल बताया था आपको, कृष्ण भगवान के कलयुग के अवतार चैतन्य महाप्रभु और बलराम जी के कलयुग के अवतार नित्यानंद प्रभु। तो गौर निताई, गौर यानी गौरांग महाप्रभु, निताई यानी नित्यानंद प्रभु, कृष्ण बलराम के कलयुग के अवतार गौर निताई। प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रचार करने के लिए, कृष्ण भावना के संदेश को लोगों को देने के लिए श्री वृंदावन, थोड़ा जाके देखो जरा, कुछ कर सकते हैं क्या, खाली बैठे बैठे मत रहो, कुछ करो। तो कृष्ण बलराम क्या कह रहा था मैं, हाँ कृष्ण संदेश, कृष्ण भक्ति का संदेश, प्रेम का संदेश लेकर प्रभुपाद जी अपने उम्र के 70वें साल में 7 समुंदर पार करके अमेरिका गए। उनका जीवन चरित्र कितने लोगों ने पढ़ा है? बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। उनका जीवन चरित्र जो है वो 6 खंडों में अवेलेबल है और 6 खंड एक साथ में भी अवेलेबल है, वो भी इतने बड़े हैं। और उनके शिष्य जो है सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है और एक संक्षेप में भी किताब अवेलेबल है छोटी सी, उसका नाम है प्रभुपाद, उसमें भी संक्षेप में उनके जीवन का वर्णन दिया है। तो दो उनको हार्ट अटैक आए बोट के अंदर, क्योंकि हवाई जहाज से नहीं गए हो और यात्रियों के बोट से भी नहीं गए हो, जो माल करते ना माल वाहतुक क्या कहते हैं उसको, कार्गो शिप, इसमें केवल सामान रहता है, बहुत सामान रहता है उसके अंदर, केवल 4-5 लोग रहते हैं। और हिंदी महासागर, फिर अरेबियन गल्फ, अटलांटिक ओशन ऐसे पार करते हुए 40 दिन की यात्रा रही और 40 दिन की यात्रा में उनको 2 हार्ट अटैक आए। और उस बोट में कोई डॉक्टर नहीं था, कोई मॉर्फिन नहीं था, कोई स्ट्रेप्टोकोकस नहीं था, कोई आईसीयू नहीं था, केवल प्रभुपाद जी ने उस भयंकर दर्द को बर्दाश्त किया। दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट, केवल उस दर्द को बर्दाश्त किया। वो मेरी एक यहाँ पर ब्रजवासी सहेली है, मतलब वो हम लोग भाई बहन मानते हैं दूसरे को, वो अभी 76 साल की है। उसको एक बार दिल का दौरा पड़ा था, हार्ट अटैक, तो उसने मुझे वर्णन किया था कि जैसे एक तलवार मेरे हृदय में घुस के बाहर निकल गई, ऐसा मुझे दर्द हुआ। दर्द वैसे ही होता है उसका, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ उनका बोट के अंदर, केवल सहन करते रहे बस। और ये भी तय नहीं किया कि बस हो गया, अभी बोट में हार्ट अटैक गया तो कहाँ पहुँचूंगा मैं, अभी वापस आऊँगा निकल के। और एक हो गया, दूसरा भी आ गया, और दूसरे हार्ट अटैक के बाद में उनको दृष्टांत हुआ, ऐसे नज़र आया उनकी आंखों के सामने कि कृष्ण भगवान ने उस बोट का चार्ज ले लिया है और वो कैप्टन बन के बोट को चला रहे। तब उनको विश्वास हुआ कि अभी मैं पहुंचूंगा और मेरा कार्य भी सिद्ध होगा। तब उन्होंने बहुत सुंदर कविता लिखी है बोट के अंदर, कृष्ण कृष्ण पुण्य हवे भाई, जब राजा रानी खुशी हो बे, ऐसे उन्होंने एक सुंदर भजन लिखा है, भागवत मार्किन धर्म ऐसा करके नाम है उसका। उसमें वो लिखते हैं कि मुझे पता नहीं आप मुझे यहाँ पर क्यों लेके जा रहे हैं, मेरे हाथ से क्या होगा काम, मैं तो बहुत नाचीज हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मुझे लेके जा रहे हैं, गुरु जी का भी आदेश है, तो ज़रूर मेरे हाथ से कुछ करने वाले हैं आप, और मैं चाहता हूँ कि मैं कठपुतली हूँ और आप मुझे नचाते रहे और मैं नाचता रहूँ जैसे आपकी इच्छा है, मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ, लेकिन आप लेके आए तो कुछ करेंगे मेरे हाथ से। फिर अमेरिका उतरे, 1 साल तक ठंड में तड़पे, कष्ट हुआ बहुत उनको, 1 साल तक परदेश में ना कोई लेने आया, ना रहने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, झोपड़ी में रहे, जहाँ पर झोपड़ियों में, जहाँ पर होता ना वो झोपड़पट्टी बोलते हैं उसको, वहाँ पर ड्रग एडिक्ट लोग रहते हैं, शराबी लोग, बेचारे लोग रहते हैं, उनके बीच में रहे सन्यासी, उनका सामान भी चोरी हो गया, फिर भी आने वाले हर संघर्ष के साथ सामना करते हुए टिके वहाँ पर, अकेले थे। उसके बाद में धीरे धीरे लोग भक्त बनने लगे उनके लिए भी, वो अपने हाथ से भिक्षा मांगकर सब्जी लाते थे मार्केट में जाकर, अमेरिका में, ये भारत की मंडी की बात नहीं कर रहे हैं, भारत में तो बहुत लोग धार्मिक होते हैं तो साधु को देख के कुछ देते तुरंत, अमेरिका के मार्केट में जाके भिक्षा करते थे, वहाँ से धान्य लेके आते थे और फिर अपने हाथ से खाना बनाते थे, फिर वो बनाने के बाद भोग लगाते थे, उसके बाद सामने आकर खुद व्यासासन लगाकर, अभी मैं कैसे आता हूँ, रेडी मिलता सब मुझे, आसन रेडी, माइक रेडी, फोटोग्राफर रेडी, माला रेडी, सब रेडी रहता है, वो खुद अपना इंतजाम करते थे, फिर बैठते थे, फिर गीता जी का प्रवचन करते थे, फिर उसके बाद में अंदर जाके प्रसाद लेके आते थे और सबको अपने हाथ से परोसते थे। और सब विदेशी लोग ऐसे बाल लंबे ड्रग एडिक्ट ऐसे कोई अजीब लोग रहा करते थे। वहाँ पर एक आदत है खाना आधा छोड़ देने की, थोड़ा खाने का छोड़ देने का उसको, तो ऐसे खाया छोड़ दिया उधर चले गए सब लोग। तो प्रभुपाद उनको गेट तक छोड़ के आते थे, कल आना जरूर, कल भी प्रवचन है। और फिर अंदर जाके सारी प्लेटें उठाते थे, सारा जो बचा हुआ उसको फेंकते थे, सारी प्लेट धुआ करते थे, फिर बर्तन जिसमें बनाया वो धोते थे और फिर सोते थे। 70 साल की आयु है उनकी, हाँ कोई जवान बालक नहीं है। फिर नेक्स्ट डे वही जाना मार्केट में, बख्शा करके लाना, खाना बनाना, फिर वही चक्कर। 6 महीने के बाद में उनमें से कुछ लोगों ने पूछा, क्या हम आपको मदद कर सकते हैं क्या, कैन वी हेल्प यू? तो प्रभुपाद सर, हाँ मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि आप मुझे कभी पूछेंगे कि ये सब कौन बनाता है। तो उन्हें पूछा ये सब कौन बनाता है, बोलो मैं बनाता हूँ। धोता कौन है? मैं ही धोता हूँ। तो क्या हम आपके साथ मदद करें? फिर धीरे धीरे एक एक भक्त आने लगे, बर्तन मानने लगे, बर्तन सब्जी काटने लगे, हेल्प करने लगे। फिर कुछ ने कहा कि हम यहीं रह जाए क्या, तो रह जाओ। तो कुछ लोग वहीं रह गए, ब्रह्मचारी बन गए। और धीरे 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 प्रभुपाद जी ने अपना आंदोलन जो है हरे कृष्ण आंदोलन को स्थापन किया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। बहुत कष्ट किया उन्होंने, उनके पहले बहुत लोग गए थे, असफल होकर लौट के आए। वो उन्होंने इनको बताया था कि आप मत जाओ वहाँ पर, और अगर जाना ही चाहते हो तो फिर अपना रूल थोड़ा सा डाइल्यूट करो, थोड़ा रूल्स इतना हार्ड मत रखो, लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, हाँ ऐसा मत करो, थोड़ा सा उसको ढील दे दो। प्रभुपाद जी ने एक भी रूल को डाइल्यूट नहीं किया, वैसे ही रूल रखा, और धीरे धीरे जाकर फिर सब लोग उसमें भक्त बने। आज हरे कृष्ण संस्था के 650 केंद्र है वर्ल्ड में, 650 सेंटर्स, और कई फार्म हाउसेस है, कई रेस्टोरेंट्स हैं, कई गेस्ट हाउसेस है, हाँ खेती है, सब कुछ। प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है, जब वो गए तभी 108 मंदिर बने थे, उनके जाने के बाद 600 हो गए उसके। तो मैं उड़पी में एक बार गया था, वो भी मेरा गांव है, तो वहाँ पर मैं गया था। उड़पी में कृष्ण का बड़ा मंदिर है, तो वहाँ के आचार्य जो हैं वो हमको बता रहे थे कि हम जब भी आचार्य बन जाते हैं तो हमारे 1 मीटर तक, शरीर से 1 मीटर तक शिष्य लोग ऐसे खड़े रहते हैं, जहाँ भी हम जाएंगे वो सर्कल उनका हमारे पास रहता है, और सर्कल के अंदर कोई आता नहीं, जो भी आता है वो सर्कल के बाहर रहता है। जनता आगे पीछे जा रही है तो क्या होता है, सर्कल के बीच में कोई आता नहीं है, वो स्वामी जी को बड़ा अंदर संभाल के रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि दूसरों के पापों की परछाइयाँ हम पर न पड़े और हम अशुद्ध न हो जाएं। इसलिए वो संप्रदाय में अंदर वो स्वामी जी लोग जो हैं वो विदेश भी जाते नहीं, क्योंकि वो विदेश जाना पाप समझते हैं। समुद्र को पार करके जाना मतलब पापियों के देश में जाना, और वहाँ के पापों को अपने को प्रभावित कर लेना। इसलिए अगर कोई गया विदेश को तो उसको संप्रदाय से बाहर कर देते, एक ही भय से कि लोगों के पाप का परिणाम हम पर ना हो। ऐसे वो अपने बारे में बता रहे हैं कि हमारे संप्रदाय में ऐसा ऐसा रिवाज है, हम लोग अपने आप को इतना बचाए रखते हैं, स्त्रियां भी दूर रखते हैं और लोग भी दूर रखते हैं, ट्रेन में भी हमारे हम जाते नहीं कभी, अपना ही साधन लेके जाते हैं, शुद्ध वातावरण को बनाए रखते हैं। और ऐसा होते हुए मुझे इतना आश्चर्य होता है कि ये बंगाली बाबू प्रभुपाद कैसे विदेश में गए और कैसे कैसे लोगों के बीच में रहे और कैसे अपने आप को बचाकर उन्होंने उनको भक्त बना दिया, उनका रंग अपने लगने के बदले में अपना रंग उनको लगा दिया। ये हमारे मुरारी बापू जो है ना, वो बड़े प्रसिद्ध राम कथाकार हैं, वो अभी हाल ही लंदन में गए थे, उन्होंने वहां पर बड़ा सप्ताह किया राम कथा का। तो वो भारत से गंगा जल लेके गए थे उधर, और वहां पर केवल फलाहार करते थे वो, उनको भय था कि लंदन में रहकर इतना पापी लोगों के बीच में कितना मेरे पर असर होगा, मेरा सारा जो कमाया हुआ आध्यात्मिक शक्ति है वो सब खत्म हो जाएगा, आई विल गेट डिस्चार्ज्ड। तो फिर आके उन्होंने तुरंत जाके गंगा जी में स्नान किया, वहां भी गंगा जल का प्राशन किया, मतलब ऐसे बोलते ना वैक्सीनेशन ले रहे थे वो, वैक्सीन कॉन्स्टेंट गंगा जल वैक्सीन। अब प्रभुपाद जी ने क्या क्या झुपड़पट्टी में रहे, उसके आजू बाजू सुबह उठते थे ना जब करने के लिए, तो सब ऐसे ड्रग एडिक्ट पर से पड़े रहते थे, सीधा उनको ऐसा पार करते हुए जाते थे वो निकल के। ये सब क्यों किया उन्होंने? क्योंकि तुम्हारे हमारे जैसे लोग जो अभी तक माया में फंसे हुए हैं, दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, उनके प्रति करुणा के कारण वो निकल गए यहाँ से। यहाँ से जाने के पहले वो वृंदावन में रहते थे, संन्यास लिया और वृंदावन में आए, राधा दामोदर मंदिर में रहते थे और वहाँ पर उन्होंने बैठकर गीता जी का अनुवाद किया और भागवत के प्रथम स्कंद का अनुवाद किया इंग्लिश में। और बड़े अच्छे थे यहाँ पर, वो भजन कर रहे थे फर्स्ट क्लास। कोई भी साधु बुढ़ापे के उम्र में धाम छोड़ के जाता नहीं कभी भी, यहाँ तक कि बूढ़ा होने के बाद में साधु जो है प्रचार बंद करके धाम में आ जाता है, ताकि वो कभी भी शरीर छूट जाएगा तो धाम में शरीर छूटना चाहिए, मृत्यु होगी तो धाम में होनी चाहिए, इसलिए अंतिम काल में सब लोग यहाँ पर आके बस जाते हैं और ये अंतिम काल में ही यहाँ से निकल के जा रहे हैं। तो यहाँ के ब्रिजवासी जो साधु थे उनको बोले, कैसे साधु आप हो, नहीं बूढ़ी अवस्था में आपकी स्थिति है और आप ये अवस्था में भारत में कहीं नहीं जा रहे हो, भारत छोड़ के सात समुद्र पार करके विदेश जा रहे हो, ये मूर्खता है, कोई बुद्धिमान साधु ऐसा नहीं करेगा। लेकिन इनके मन में करुणा इतनी थी, गुरु जी की आज्ञा भी थी उनको और करुणा भी पतित जिनों के लिए इतनी थी कि लोगों को क्या होता है, मतलब उनकी गतिविधियों को मूर्खता समझते हुए भी उन्होंने वो किया। 14 बार विश्व का भ्रमण किया, 10,000 लोगों को शिष्य बनाया, विदेशियों को 108 मंदिर बनाए, 80 किताबें लिखी, उसके अंदर सबसे बड़ा किताब जो था वो भगवद गीता एज इट इज, श्रीमद भागवत के 30 खंड, चैतन्य चरितामृत के 17 खंड, ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ऐसे कई ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया और कई किताबें खुद भी लिखी। इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने किया और वो सब करने के बाद में फिर दोबारा वो यहाँ पर आए। 1974-72 के बाद से जमीन लिया गया, फिर मंदिर बनाया गया। ये मंदिर जो है प्रभुपाद जी ने अपने जेब खर्च से बनाया, खुद के जिम्मेदारी में धन इकट्ठा करते हुए इस मंदिर को बांधा है। यहाँ का मंदिर, जुहू का मंदिर और मायापुर का मंदिर अपने नेतृत्व में, अपने निर्देश में, प्रत्यक्ष और अपने फंड के आधार से इकट्ठा करते वर्ल्ड में जो बनाया हुआ है। और सारा प्रचार करने के बाद में वो इतनी जीर्ण अवस्था में वापस आए, एक अवस्था ऐसी उनकी आई कि उनको हाथ उठाने के लिए भी किसी और की मदद लेनी पड़ती थी, मतलब उनका हाथ अगर यहाँ से यहाँ रखना है तो कोई उसको उठाएगा और यहाँ रखेगा। एक अवस्था ऐसी आई कि उनके पलके भी कोई उठाएगा और उनको दिखाएगा, प्रभुपाद जी देखो कौन आए हैं, फिर वो पलक गिर जाती थी, इतने बूढ़े हुए तो। लेकिन उनका श्रीमद् भागवत का जो अनुवाद करने का काम था वो चालू था। 3 महीने उन्होंने भोजन नहीं किया, 3 महीने तक सब छोड़ दिया था उन्होंने, तो वो जल पीते थे थोड़ा सा, रोज जूस पिया करते थे और बिस्तर में लेटे थे, वो उनका कमरा यहीं पर है एकदम बाजू में। और उनकी कई वीडियो फिल्म ऐसी है कि एकदम चर्म और हड्डी इतना ही बचा हुआ है, एकदम जीर्ण अवस्था है, लेकिन सब स्पष्ट उच्चार में ब्रह्मा जी ने कैसे बच्चों को चुराया उस कथा का अनुवाद कर रहे हैं स्पष्ट उच्चारण में। और भक्त लोग क्या कर रहे हैं, एक माइक्रोफोन उनके मुंह पे रखा हुआ है, ऐसे रखा है और वो बोल रहे हैं, वो श्लोक बोल रहे हैं, उसका अनुवाद ये बोल रहे हैं, और वो जो माइक्रोफोन है उसका ईयरफोन किसी के कान में है और वो टाइप कर रहे हैं। इस तरह से ब्रह्म सम्मोहन लीला जो है वो आखिरी अध्याय उन्होंने अनुवादित किया हिंदी में और उसके बाद उनका शरीर यहीं पर छूटा, इसी घर में भक्तों के बीच में कीर्तन करते हुए। भक्तों ने, कई सन्यासी थे उसके अंदर विदेशी, हाँ 1977 यहाँ पर शरीर छूटा। जब उनका शरीर यहाँ छूटा तो जिन साधुओं ने उनको बताया था कि मूर्खता है, उनने सबने उनका गौरव किया, क्योंकि अपना पूरा सेवा करके फिर ब्रज में आए और यहीं उन्हें शरीर छोड़ दिया। तो एक साधु का ये लक्षण है कि वो किसी भी कीमत पर सेवा नहीं छोड़ता अपनी, चाहे ब्रजवास छूट जाए, चाहे कि जाना पड़े आना पड़े, चाहे त्याग करना पड़े, सेवा सबसे प्रधान है। उन्होंने, उनके गुरुजी ने उनको 1922 साल में प्रभुपाद जी 26 साल के थे, उनका जन्म 1896 में हुआ था, तब उनके गुरु महाराज ने उनको बताया था कि अरे आप तो पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, जानते हो, क्यों ना हम आप कृष्ण भगवान का प्रेम का संदेश विदेशों में जाकर अंग्रेजी भाषा में क्यों ना आप उसका प्रचार करते हो। तो तब तो उनकी पहचान भी नहीं थी। बोले कौन साधु है ये, मुझे बिना पहचान के इतनी बड़ी आज्ञा दे रहा है। तो उन्हें वाद विवाद किया था, अभी भारत तो परतंत्र में है, तो पहले तो भारत इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके बाद में फिर प्रचार कर सकते हैं। तो उनके गुरु महाराज ने कहा कि अरे तो गवर्नमेंट तो बदलती रहती है, आज ब्रिटिशों का है कल आपका हो जाएगा, लेकिन जन्म मृत्यु का चक्र जो है बदलता नहीं है। गवर्नमेंट ब्रिटिश की आ जाए, तुम्हारी आ जाए और किसी की आ जाए, तो भी जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो बदलता नहीं है, सबको मरना है। इसलिए गवर्नमेंट को चेंज होने के लिए वेट करने के लिए टाइम नहीं हमारे पास। गवर्नमेंट को चेंज होने के लिए वेट करेंगे तो पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे उसके बीच में। इसलिए जीव के ऊपर करुणा होनी चाहिए। तो वो कन्विंस हो गए कि हाँ सही बात है, और आगे शिष्य बने उनके, फिर संन्यास ग्रहण किया। लेकिन उनके गुरु महाराज उनके स्वप्न में बार बार आते रहे कि आपको विदेश जाना है, आपको विदेश जाना है। तो संन्यास लेने के बाद में वो विदेश चले गए और अपना कार्य जो है पूरा करके यहीं पर आकर उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। मुझे बीच में एक बार ऐसा विचार आया था मन में कि जब वो मैन ऑफ द मिलेनियम अवार्ड दिया गया, पता है किसको मिला था वो मैन ऑफ द मिलेनियम भारत में? हाँ, अमिताभ बच्चन को दिया गया। इतना दुख हुआ मुझे वो सुनकर, मतलब अमिताभ को दिया था दुख नहीं हुआ, लेकिन इस युग के युग पुरुष कौन है, हु इज द मिलेनियम मैन ऑफ द मिलेनियम? एक 1901 से लेके 2000 तक प्रधान कार्य किसने किया है? उसने प्रभुपाद जी ने किया। स्वामी विवेकानंद ने 1894 में एक भाषण दिया, लोग प्रभावित हुए हिंदू धर्म के बारे में। आज भी वो भाषण इतिहास के पुस्तकों में हम पढ़ते हैं उसको। भाइयों और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैलिफोर्निया में लेक्चर दिया उन्होंने, शिकागो के अंदर लेक्चर दिया था। हम बड़े प्रभावित थे उस समय। लेकिन उस प्रवचन को सुनकर एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, दिमाग को अच्छा लगा, बहुत इम्प्रेस हो गए लोग, वाह क्या बात है। लेकिन लोगों ने मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना नहीं छोड़ा। लेकिन प्रभुपाद जी के प्रचार से हजारों लाखों लोगों ने ये सब पाप करना छोड़ दिया और वो भगवान के भक्त बने। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो पत्रकार लोग उनको पूछते थे कि भारत में हम सुनते हैं बहुत लोग चमत्कार करते हैं, अभी देखो आप कुंभ मेला जाएंगे ना, सब चमत्कारिक लोग वहाँ बैठे हुए हैं, पूरा मॉल लगा हुआ है, क्या चाहिए आपको स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, क्या क्या वैरायटी चाहिए, सब मिलेगी आपको वहाँ पर। और भारत के साधुओं की विशेषता यह है कि वो चमत्कार करते, कुछ जादू दिखाते, अदृश्य हो जाते हैं। मैं विश्वरूप दास कथा कर रहे हैं, अचानक गायब, आवाज़ आ रही है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही, फिर कुछ देर बाद में फिर दिखाई पड़ेंगे, ऐसा हो सकता है? ये साइंस है पूरा। ऐसे अजीब लोग भारत में, अजीबो गरीब लोग। हाँ, ये हमारे गुरुदेव ने एक सुंदर किताब लिखी है, उसका नाम है जर्नी होम। हाँ, हिंदी में लिखा है उसको अनोखा सफ़र, मराठी में लिखा है तुषार्थ पथिक, गुजराती में है पहलू पारनु प्रवास, कन्नड़ा और सब आंध्र भाषा सब भाषा में है वो। उसमें उन्होंने ऐसे साधुओं का निकट दर्शन किया है, उनके साथ रहे, उनका वर्णन पूरा किया है उसके अंदर, एक क्या क्या चमत्कार करते थे। एक लड़का सा आदमी जो है आंखों में एक गॉल्स पीस रखे, लोहे की सली रखे, दीवार को छिपा के उसको पूरा बेंड किया उसने, लोहे की सली को, स्टील होता है रॉड वो हम डालते हैं बिल्डिंग के अंदर, उतनी बड़ी सली को उसने आंखों पर केवल एक गॉज पीस रख के ऐसा रखा उसको, ऐसा सीधा दीवार पे चिपकाया और वो आगे आगे गया और उसको पूरा बेंड किया उसने। ऐसे कई चमत्कारों का वर्णन है उसके अंदर। एक साधु आया, उसने चैलेंज दिया, 50 डॉक्टर आए थे विदेशी उस सम्मेलन में, उन्होंने कहा कि मैं अभी मेरे हार्ट रेट को, हार्ट बीट को और सांस को पूरी बंद कर दूंगा, आधा घंटे तक ना पल्स मिलेगी ना बीट मिलेगा हार्ट का, आप सब जांच कर लेना, पूरा ईसीजी निकाल लेना, बीपी लेना, सब कुछ करना, और आधा घंटे बाद मैं दोबारा मेरे हार्ट बीट को चालू करके दिखाऊंगा। और भरी साधुओं की सभा में डॉक्टरों के साथ वेल रिसर्च्ड, वेल इक्विप्ड टेक्नोलॉजिकल लोगों के सामने उन्होंने, वो ऐसे स्थिति में गए कि पल्स जीरो, हार्ट रेट जीरो, रेस्पिरेशन जीरो, 30 मिनट्स ऑलमोस्ट, मतलब डिक्लेयर डेड 30 मिनट के बाद में पल्स चालू, हार्ट बीट चालू, सब कुछ चालू। ऐसे अनेक साधु होते हैं जिसको कहते हैं परकाया प्रवेश बोलते हैं उसको, वो तो अपना शरीर छोड़ के कहीं चले जाते हैं, फिर दोबारा लौट के आते हैं। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, कहाँ से लिंक हो गया इसका? हाँ, तो रिपोर्टर पूछ रही है कि आपका चमत्कार क्या है, आप भी तो भारत से आए हैं। तो उन्होंने एक तरफ उंगली दिखाई, वहां पर कुछ विदेशी युवतियां और कुछ विदेशी ब्रह्मचारी बैठे थे। उन्होंने कहा इनको देखो, ये मांसाहारी व्यभिचारी नशा करने वाले जुआ खेलने वाले पापी जीवन जीने वाले पापी परिवार से इनका जन्म हुआ है, इनकी संस्कृति कुछ अलग ही थी। आज वो लोग फर्स्ट क्लास वैष्णव बन गए हैं, ना शराब पीते हैं, ना जुआ खेलते हैं, ना चाय पीते हैं, ना लहसुन प्याज खाते हैं, मांस तो दूर ही रह गया। शुद्ध भक्त का जो व्यवहार होता है वैसा पूरा अलग से वो जीवन जी रहे आज, और यहाँ तक कि स्थापित प्रतिष्ठापित भगवान के विग्रहों की भी पूजा ब्राह्मण के रूप में दीक्षा लेकर कर रहे हैं। तो आकाश से मंत्र बोल के कोई राख उत्पन्न करना या आकाश से सोने की घड़ी पैदा करना और आपको देना, ये बड़ा चमत्कार है कि हृदय परिवर्तन बड़ा चमत्कार है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो ठीक है, विवेकानंद जी स्वामी ने बहुत बड़ा प्रवचन दिया, सबको प्रभावित कर दिया भारत धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं हुआ किसका। वो प्रवचन सुन के कोई भक्त नहीं बना भगवान का। तो साधु वो होता है वो केवल प्रचार नहीं करता है, वो प्रचार करने से पहले अपने आप को ऐसा एक प्रभावी उदाहरण बनाता है, पावरफुल एग्जाम्पल, कि उसको देखकर लोग बदलते हैं। ऐसा कोई योगी देखा है क्या आपने, जो सिद्ध बाबा है चमत्कार करता है लेकिन अमेरिका गया और किसी के लिए खाना बना रहा है, प्लेट भी धो रहा है उसके? नोबडी कैन गो देयर। इन्होंने इतने बड़े महात्मा होने पर भी अपने आप को एकदम तुच्छ बनाया और उनकी सेवा किया उन्होंने पहले, फिर धीरे धीरे उनके शिष्य बने वो और सेवा करने लगे। ठाकुर भक्ति विनोद जो है ना, वो प्रभुपाद जी के गुरु जी के पिताजी थे, उनका अस्तित्व था ना वो पिछले सेंचुरी में था, मतलब 1800 में उनका देहांत शायद 1902 को हुआ है शायद। तो उन्होंने ये दृष्टांत दिया था, उनका घर है, अभी हम लोग यात्रा करके जाएंगे, अभी इस यात्रा के बाद मैं वहाँ जाने वाला हूँ, अपने अस्पताल के और 150 लोग वहाँ पर आने वाले। तो उनका घर है गोद्रुम द्वीप में गंगा जी किनारे, तो उनके घर के सामने नदी है जलांगी, और जलांगी के पार में नवद्वीप है, मतलब जहाँ भगवान का जन्म हुआ है गौरांग महाप्रभु का। तो अपने घर के उसमें क्या कहते हैं उसको, गैलरी में खड़े थे वो पहले माले पे, आप गए थे ना मैडम फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ पर खड़े रहकर उन्होंने देखा रात के अंधेरे में कि नदी के पार बहुत प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, बहुत सुनहरा प्रकाश, पहले वो देखा। अगली बार और एक दृष्टांत उनको हुआ, तो उसमें उन्होंने देखा कि उस प्रकाश के अंदर कई प्रकार के लोग, जो काले गोरे पीले छोटे नाटे ऊंचे विदेशी देशी, हर प्रकार के लोग वहां पर हाथ ऊपर उठाकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उसी के आधार पर उन्होंने वहां जाकर फिर महाप्रभु चैतन्य की जगह को खोज लिया और पुनः प्रस्थापित किया। उन्होंने भविष्यवाणी की, ये शास्त्र में भी लिखा है और मैं भी कह रहा हूं जो मैंने देखा है और जो शास्त्र मैंने पढ़ा है, कि अभी बहुत ही जल्द एक सेनापति भक्त का जन्म होगा, और वो सेनापति भक्त जो है वो जो मैंने दृष्टांत में देखा है वो सत्य करके दिखाएगा। उसके पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी ते आचे सर्व नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबो मोर नाम। पृथ्वी में जितने नगर है, जितने ग्राम है, जितने भी गांव है, जितने भी शहर है, वो सब शहरों में गाँव में मेरे नाम का कीर्तन किया जाएगा। ऐसे महाप्रभु चैतन्य ने आज से 527 साल पहले जन्म लेकर यहाँ पर लीला किया, 48 साल तक उसमें भविष्यवाणी की थी। उसके आगे जाकर ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा कि सेनापति भक्त आएगा और संदेश को विदेश पहुँचाएगा, जो मैंने मेरी आंखों से देखा है उसको सत्य करके दिखाएगा। और उसी साल 1896 में प्रभुपाद जी का, मतलब अभय मोहन डे, इसका जन्म हुआ कलकत्ता में। उनके पिताजी गौर मोहन डे थे, माताजी राधा रानी, नहीं माताजी का नाम रजनी था शायद। तो हमेशा प्रभुपाद जी साधुओं को, प्रभुपाद जी के पिताजी साधुओं को भोजन कराया करते थे रोज दोपहर में लंच के, सब उनको कपड़े का व्यापार था, दोपहर में लंच में घर पे आते थे और खाना खाने के पहले बाहर जाकर साधुओं को बुलाते थे, कोई भूखा है क्या, तो कुछ लोग आते थे उनको खिलाते थे, उसके बाद में खुद खाते थे। साधुओं को भोजन करने के बाद में उनके पिताजी बोलते थे, कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि ये राधा रानी का भक्त बने। ये एक चीज मांगते थे सब साधुओं से कि इनको आशीर्वाद दो मेरे बालक को कि राधा रानी का बड़ा भक्त बने। तो प्रभुपाद जी ने इस बात को, इस दृष्टांत को सत्य करके दिखाया है। अभी आप मायापुर, अपने आप में से कितने लोग मायापुर गए? हाँ, बहुत लोग नहीं गए, कभी कम लोग गए। मायापुर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, नवद्वीप, मतलब नौ आइलैंड है वहाँ पर, द्वीप है, द्वीप। और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जन्म लेकर 24 साल तक लीला किया, संकीर्तन आंदोलन का आरंभ किया, हरे कृष्ण महामंत्र को, संकीर्तन को स्थापित किया, और वहाँ से जाकर विश्व भर में उसका, मतलब भारत भर में प्रचार किया, और उसी को फिर बाकी लोगों ने आगे बढ़ाया। तो प्रभुपाद जी ने वो जो मैसेज है वो पूरे विश्व में फैलाया, और मायापुर वो जगह है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म जहाँ हुआ है उसके बहुत बहुत ही बाजू में जगह है वो, जहाँ पर आज इस्कॉन की 700 एकड़ जगह है, पूरा शहर बनाया, पूरा सिटी ऑफ गॉड। और उसमें आज देश विदेश के, हर रंग के, हर भाषा बोलने वाले, हर संस्कृति के, ऊंचे नाचे छोटे बड़े, अलग अलग प्रकार के, सब प्रकार के लोग वहाँ पर हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आप गए थे मंदिर में, कौन गा रहा था? विदेशी गा रहे थे, विदेशी। हमारी संस्कृति है ये, हमारे देश की संस्कृति है, और यहाँ पर विदेशी लोग वृंदावन में बैठकर भजन कर रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये लगती है हमेशा कि अगर मुझे कोई बताएगा, समझो फॉर एग्जांपल कि अभी आप तो बहुत साल से भक्ति में हो, क्यों नहीं वृंदावन में आके बस जाते आप, या क्यों नहीं मायापुर में आके बस जाते, तो 50 बार सोचूंगा कैसे होगा, कहाँ रहूँगा, कहाँ इनकम होगी, कहाँ खाऊँगा, हवा कैसी है, एसी मिलेगा क्या, हीटर रहेगा क्या, कूलर रहेगा क्या, गर्म पानी मिलेगा, रास्ते कैसे होंगे, गवर्नमेंट कैसी होगी, इतना मैं सोचूंगा उसके बारे में। हालांकि मैं भारतीय हूँ, यहाँ का वेदर, यहाँ का कल्चर मेरे को पता है, लेकिन किसी विदेशी को कहा जाए कि तुमको वृंदावन में जाके फुल टाइम रहना है तो कितना कॉन्ट्रास्ट है उसके अंदर, बाप रे। अभी वहाँ पर अभी भी माइनस टेम्परेचर चल रहा है, और वहाँ से लोग यहाँ आएंगे तो इनको तुरंत 50 डिग्री का अनुभव करना पड़ेगा गर्मी में। और कल्चर कितना अलग है, यहाँ के लोग कितने अलग है, यहाँ का खाना पीना, यहाँ का पानी सब सूट नहीं होता है उनको। फिर भी आज वृंदावन में करीब करीब 1000 लोग अलग अलग देश के यहाँ पर आकर बसे हुए हैं, अपना सब धंधा वंदा छोड़ के, थोड़ी बहुत पूंजी बना के यहाँ पर आके बस गए हैं। उनको वृंदावन में रहना है, भक्ति करना है। कितना डिफिकल्ट है वहाँ, यहाँ का खाना पीना स्टाइल कैसे कैसे, पानी भी पीते नहीं, उनको हजम नहीं होता, पेट बिगड़ जाता उनका, इतनी गर्मी 50 की, आज 50 तक टेम्परेचर पहुँचता है यहाँ पर, और सर्दी भी पहुँचती है 0 तक। मैं भी पिछले महीने आया था, 0 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पर, कोई हीटिंग सिस्टम नहीं, यहाँ पर कोई हीटर चलता ही, लाइट ही नहीं यहाँ पर, तो क्या हीटर चलाएंगे आप लाइट तो ऐसी जाती है कि भाई लाइट रहती कम है जाती ज़्यादा है, ऐसी परिस्थिति यहाँ पर है। कुछ साधन नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी ये लोग हमारे को शर्मिंदा करते हुए यहाँ पर फुल टाइम बसे हुए। मायापुर में वैसे पूरा एक कॉम्प्लेक्स है पूरा, उसमें चाइनीज लोग भी है, चाइनीज लोग जिनको शास्त्र में म्लेच, मतलब यह चांडाल कहा गया है, शास्त्र में उसका वर्णन आता है, जो कुत्ता खाते हैं, कीटक खाते हैं, सांप खाते हैं, उनको चांडाल कहा जाता है। कोई संस्कृति नहीं उनके अंदर, कोई कल्चर नहीं है, कोई लाइफ ही उनका कुत्ते के समान है। ऐसे लोग भक्ति में आए हुए हैं और उन्होंने मायापुर में फुल टाइम रहते हुए बच्चों को जन्म दिया है, और उनके बच्चे जन्म से ही भक्त बने हुए हैं। मंगला आरती में आते सुबह बैठते, आके 7 बजे की आरती में आके सुबह उनको बैठने का जगह अलग से बनाया गया है। वहाँ पर इतने इतने से बच्चे जो है, मैंने फोटो निकाला उनका, धोती कुर्ता तिलक लगाकर खड़े रहते हैं दर्शन में। उसमें एक विदेशी बालक ऐसा है कि वो रोज, उसकी चाइनीज माता है और कोई इंग्लिश पिता है उसका, तो धोती कुर्ता पहन के, जैकेट पहन के ऐसे आता है सुबह रोज मंगल आरती में, और उसकी मैया उसके पीछे पीछे आती है, उसको अगरबत्ती देती है। जब पुजारी भगवान को अगरबत्ती दिखाता है तो वो भी अगरबत्ती दिखाता है, फिर मैया को देता है, फिर मैया जब पुजारी ने दीपक लिया हाथ में तो वो भी दीपक हाथ में लेता है और भगवान को दीपक लगाता है, फिर वो पुजारी ने दीपक दे दिया किसी को तो भी मैया को दीपक दे देता है। ऐसी पूरी आरती करता है वो भगवान की खड़े रहकर वहाँ पर, इतना सा बालक है। फिर चामर, फिर मोरपंख, फिर शंख बजाता है उसके साथ में। मंगला में भी, दर्शनार्थी में भी, फिर प्रभुपाद जी की गुरु पूजा होती है तो उसके बाजू में खड़ा रहता है और प्रभुपाद की भी गुरु पूजा करता है। इतना सा बालक है, विदेशी बालक, इस प्रकार के संस्कार मिल रहे हैं उनको। इसको कहते हैं परिवर्तन। इट्स नॉट जस्ट सुपरफिशियल परिवर्तन कि फॉर डिस्कशन से यू नो आई हैव रेड, यू हैव रेड, लेट अस डिस्कस एंड आई विल कीप स्मोकिंग एंड यू कीप ईटिंग मीट एंड वी विल कीप डिस्कसिंग भगवद गीता, ऐसा क्या फायदा है उसका? व्हाट इज द यूज ऑफ पांडित्य? तो प्रभुपाद जी ने परिवारों के परिवारों के परिवारों को बदल दिया पूरा। और मैं भी नहीं कर सकता वो, मैं भी आज भी, आज की तारीख में भी इस हरे कृष्ण के कल्चर को इतना समझते हुए भी मैं फुल टाइम ज्वाइन नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ और जो भी होता है उतना करता हूँ। लेकिन इनको देख के मुझे यहाँ पर वृंदावन में, मायापुर में बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे हो सकता है ये। चाइनीज लोग उस देश में तो अंडरग्राउंड भक्ति करनी पड़ती है। पता है आपको चाइना में क्या होता है? चाइना में आप खुलेआम किसी भी धर्म का पालन नहीं कर सकते, आपको अरेस्ट किया जाएगा। हांगकांग, चाइना, ये सब में कोई धर्म ही नहीं है, कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म। तो वहाँ के लोग यहाँ की प्रभुपाद जी की भगवद्गीता स्मगलिंग करते हैं और एक एक गीता फटने तक हजार हजार लोग पढ़ते हैं उसको, और वो गीता पढ़ के, प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई गीता जो अनुवाद है उसको पढ़ के वो भक्त बनते हैं। और वहाँ पर वो कभी भी रिलीजियस वेस्ट नहीं पहन सकते, गरीब रहते हैं बहुत। जैसे मुसलमान लोग जीवन में एक बार पैसा इकट्ठा करके हज की यात्रा करते हैं, वैसे वो लोग जीवन में इकट्ठा करके वृंदावन में आते हैं और यहाँ आके धोती कुर्ता पहनते हैं, यहाँ आके तिलक लगाते हैं और जाते वक्त धोती कुर्ता छोड़ के जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पहन नहीं सकते उसको। सब अंडरग्राउंड है, उनका सत्संग भी अंडरग्राउंड सीक्रेटली होता है, ओपनली करेंगे तो जेल में जाएंगे। वो शायद जीवन में एक ही बार आएंगे, वहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, कोई धाम नहीं है, ऐसे आप लोग घूम रहे हैं यहाँ के भगवान ने बंसी बजाई थी, यहाँ पर ये किया था, यहाँ पर खेल खेला था, कोई धाम नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, सब कुछ छुप छुप के करना पड़ता है। फिर भी कितना विश्वास और कितनी श्रद्धा है उनके मन में, हमारे लिए कितना सपोर्ट है, हमारे सत्संग है, सब कुछ आप खुलेआम कर सकते हैं, आप जुलूस निकालो, यहाँ पर कोई रोकेगा नहीं आपको। इसका जुलूस निकल रहा है, इसका निकल रहा है, कीर्तन हो रहा है, शोभा यात्रा निकल रही है, भगवान की मूर्ति निकल रही है, पुष्प का उत्सव हो रहा है, सब कुछ खुलेआम यहाँ पर होता है, कोई बंधन नहीं यहाँ पर। वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते आदमी, और डर भी है कि हम अरेस्ट हो जाएंगे, कौन करेगा भक्ति, क्या करना है जाने दो ना, किसका धर्म, अपना धर्म तो है नहीं, ये तो परदेशी धर्म है, कौन करेगा उसको। फिर भी ये लोग, मैंने उनको प्रवचन दिया है, आपको क्या बताऊं, जब मैं प्रवचन दे रहा था तो हर एक चाइनीज आदमी रो रहा था। आई टेल यू, एवरी सिंगल पर्सन वॉज क्राइंग वेन आई वॉज टेलिंग देम स्टोरीज। आप सोच सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वो बहुत कीमती है। एक कथा जो मैंने उनको सुनाई थी वहां पर मान मंदिर पे, उनके लिए बहुत मूल्य कथा थी वो, क्योंकि दोबारा उनको कथा सुनने मिलेगी नहीं, गारंटी मालूम नहीं उनको, पता नहीं कब आएंगे यहाँ पर और कब वो राधा रानी की कथा सुनेंगे, मान लीला। तो रो रहे थे वो, शायद आप लोग नहीं रोएंगे सुन के उसको, तो आपको पता है कि हम दोबारा आ सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं, लेकिन उनके पास वो सुविधा नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने मृत्यु के बाद भी उनकी किताबों के माध्यम से उनको प्रचार किया है। आप सोच सकते हैं, वो गए 77 में, उसके बाद में उनकी किताबें रही, उनके भक्त रहे, और वो जान पे बाजी लगाकर उनके भक्त जो विदेशी भक्त हैं वो चाइना में पैंट शर्ट पहन के प्रवेश करते हैं, सन्यासी लोग वहाँ प्रचार करते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा था, चाइना में जो प्रचार करेगा उस व्यक्ति को मैं स्वयं आकर गौलोक धाम ले जाऊंगा। तो ऐसी कथा में बताया प्रभुपाद जी ने, क्योंकि चाइना अभी भी इतना भयंकर देश है, वहां पर कोई धर्म का पालन नहीं कर सकता। तो उस कथा में ऐसे ही कोई व्यक्ति था, भक्त था, प्रभुपाद का शिष्य था, उसको प्रेरणा हुई, वो चाइना गया, प्रचार किया वहां पर उसने, अंडरग्राउंड जाके बहुत लोगों को भक्त बनाया, फिर प्रभुपाद ने उनको संन्यास दिया। और संन्यास लेने के बाद में वो पथभ्रष्ट हो गया, उसको क्या पता नहीं क्या हो गया उसके जीवन में, सब कुछ छोड़ दिया उसने। सन्यासी आदमी, इतना प्रचार किया उसने, भक्तों लोगों को भक्त बनाया चाइनीज लोगों को, फिर खुद ही छोड़ दिया सब कुछ, वो भी विदेशी था सन्यासी, और भ्रष्ट हो गया, दूर चला गया भक्ति से। उसके बाद में उसको कैंसर हो गया, और उसको बैक का कैंसर था, स्पाइन का, बहुत भयंकर, बहुत वेदना थी उसकी। तो उसमें उसने दोबारा भक्तों को कांटेक्ट किया कि कैन आई कम बैक टू टेम्पल, नहीं, पहले उसने माँ को कांटेक्ट किया, कि कैन आई कम बैक होम, तो माँ ने कहा तो जवान था तभी तो हरे कृष्णा बन गया, मुझे पसंद नहीं था। आज तो कई साल बीत गए, अभी तुम पता नहीं कितने साल बीत गए, तो कैसा दिखता होगा मुझे पता नहीं, तो घर छोड़ के चला गया, हरे कृष्णा बन गया, तो आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू, ऐसे उसके माता ने उसको बता दिया। वो चाइनीज नहीं था, वो किसी यूरोपियन देश का था। तो उसने फिर उतनी दर्द भरी अवस्था में उसने मंदिर में संपर्क किया जिसमें वो रहा करते थे पहले। तो तुरंत उन्होंने बोला हाँ यस यस सर महाराज प्लीज कम, तो महाराज ने छोड़ दिया था उन्हें सब कुछ, फिर भी महाराज बोला, उनको बुलाया तो मंदिर में उनको कमरा दिया, उनको सेवा करना आरंभ किया उनका। तो वो जो माता थी उनकी, उनके स्वप्न में प्रभुपाद जी आए और प्रभुपाद जी ने स्वप्न में उस माता को बताया कि तुम्हारा बेटा ये मंदिर में है, वहां जाके उसको मिलो। वो माता कभी प्रभुपाद से मिली नहीं थी, शी डिड नो हु प्रभुपाद इज, समबडी केम इन अ ड्रीम एंड टोल्ड। तो सपने में बताया हुआ पता ढूंढ ढूंढ के वो मंदिर में आई और प्रभुपाद जी की कैसे यहाँ मूर्ति है, वैसे देखी मूर्ति उन्होंने, बोला यही मेरे सपने में आए थे कल, उन्होंने बताया मुझे कि ये मंदिर में तुम हो और हकीकत में तुम मुझे इसी मंदिर में मिले। तो उनको कितना आनंद हुआ कि प्रभुपाद जी हैं, ऐसा नहीं है प्रभुपाद चले गए चले गए। तो फिर कुछ दिन रहे वो और अंतिम समय आया ना, तो इतने जर्जर हो गए थे वो, इतने जर्जर हो गए थे कि उनको वैसे ही शक्ति ने हाथ उठाने के लिए, इतने दुखी थे मतलब दर्द में थे। तो अचानक जब लास्ट समय उनका आया तो इतना जो कमजोर आदमी है जिसकी पलके भी अपने आप से नहीं उठती है, खाट करके उठ के बैठ गया और बोला प्रभुपाद जी यू केम, और गिर गया और मर गया। सो यू कैन इमेजिन, हमको लगता है कि साधु लोग चले गए, अभी वो नहीं है, साधु लोग अभी मरते नहीं है, साधु लोग हमेशा रहते हैं क्योंकि दिव्य व्यक्तिमत्व होता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रभुपाद जी गुजर गए 77 में शरीर से, लेकिन जो श्रद्धा रखते हैं उनके लिए आज भी है वो, आपको संबंध का अनुभव आएगा उनका, यू कैन एक्सपीरियंस हिज प्रेजेंस। ऐसे एक कहानी में आपको बताया, टाइम कम है हमारे पास, ऐसी अनेक कहानियां हैं कि प्रभुपाद जी ने कैसे अब वो हैं इसका अनुभूति बहुत लोगों को दिया है। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में ऐसे कई मरीज हैं जिन्होंने बताया अरे ये तो यहां बैठे हैं, कल तो थर्ड फ्लोर में थे वो, मेरे पास बैठे हुए थे, ऐसे मरीजों ने मुझे बताया होगा। हमारे हॉस्पिटल में हमारे गुरु भाई, एक बहन है उनका नाम है राशेश्वरी माता जी, उनसे आप कभी मिल लेना, उनको पूछना आप कभी, तो आप बताएंगे सॉरी आपको। अपने हमारे हॉस्पिटल के एक डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर, वन ऑफ द डायरेक्टर्स, उनका नाम प्रवीण मूले हैं, परमहंस प्रभु, उनकी माता हॉस्पिटल में एकदम लास्ट स्टेज में आई, एकदम लास्ट स्टेज में, बड़ी परेशान थी वो। जब एडमिट हुई तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट रात को उनको सपने में प्रभुपाद जी आए, उन्होंने कहा तो नाम बोला उनको कि हे व्हाटएवर नेम, आप निश्चिंत रहो आपका सब काम मैं कर दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट डे जब उठी माता एकदम निश्चिंत, कल परेशान आज निश्चिंत, बोला क्या हुआ, तुम्हारे महाराज जी मेरे सपने में आए थे, बोले सब कुछ मैं संभाल लूंगा चिंता मत करना, एकदम निश्चिंत होकर वो अगले दिन गुजर गई। हमने सबने उनके लिए कीर्तन किया। और एक हमारी गुरु बहन है, उनका नाम है क्या नाम वो याद नहीं रहे, वो कहाँ पे हमारे माता जी का है, माधुरी, वो कौन सी माता जी, रेलवे वाली, वो डाइड ना अपने हॉस्पिटल में अभी चेस्ट कैंसर से, अपने स्पिरिचुअल केयर में काम करती थी ना माता जी, अंजनी प्रिया माता जी, अंजनी प्रिया माता जी हमारे हॉस्पिटल में काम करती थी पहले, बाद में रेलवे में काम करने गई, फिर उनको कैंसर हो गया, फिर वो आ गई, बड़े दर्द में थी वो, लास्ट स्टेज में आई थी हमारे पास हॉस्पिस में, हमारे यहाँ पर नहीं बॉम्बे में। उनके सपने प्रभुपाद जी आए, सपने में प्रभुपाद जी ऐसे बैठे थे कुर्सी में, सभा में लोग बैठे थे, ये व्हील चेयर में थी सपने में, हाँ तो प्रभुपाद ने उनको दूर से बुलाया सपने में से, आओ मेरे पास आओ, उनको कोई लेके गया व्हील चेयर से प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद ने कहा तुम निश्चिंत रहो मैं सब तुम्हारी देखभाल करूँगा। अगले दिन से उन्होंने पेन किलर दवा देना छोड़ दिया, बिना पेन किलर दवा लेते हुए वो आराम से रही, खुश रही, आनंदित रही और भगवान के नाम का कीर्तन सुनते हुए शरीर छोड़ दिया उसने। सो यू कैन सी स्पिरिचुअल लाइफ को ऐसा बोलने का, ऐसे कोई प्रवचन करने का विषय नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ इज मोस्ट प्रैक्टिकल, इसमें अनुभूतियाँ होती हैं, इसमें अनुभव होते हैं, उससे अनुभव के आधार पर ही भक्त आगे बढ़ते हैं। और प्रभुपाद जी ऐसे दिव्य युग पुरुष हो गए हैं, इसलिए मुझे दुख हुआ था कि ये मुझे कुछ अमिताभ बच्चन से वैर नहीं है। लेकिन युग पुरुष का मतलब क्या होता है? जिसने इस युग में, इस मिलेनियम में, इस शताब्दी के अंदर ऐसा काम किया है जो सराहनीय है पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए। हर देश में आज हरे कृष्ण का मंदिर है, हर देश में लोग जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। वो तो काले हैं, गोरे हैं, चपटे हैं और चाइनीज है, पीले रंग के हैं, हर रंग के लोग, हर भाषा के लोग यही जप करते हैं मंत्र। और आप यहाँ पर भी देखिए, हर देश के लोग आपको मिलेंगे यहाँ पर आपको। हमारा तुम्हारा धर्म को पालन कर रहे हैं वो, और हम लोग नहीं करते हैं। हम उनके कपड़े पहनते हैं, वो हमारे कपड़े पहनते हैं। मैं जब मंदिर में गया तो मुझे यही फीलिंग आई थी, कह रहे मैं तो गौड़ सारस्वत ब्राह्मण हूँ जन्म से, और लोग विदेशी हैं, पढ़े लिखे पीएचडी हैं और ब्रह्मचारी बन के मंदिर में बैठे हैं। क्या बात है वो कि उनका अट्रैक्ट कर रही है उनको। और मैं शर्मिंदा होगा कि मैं ब्राह्मण होते हुए सब कुछ करता हूँ जो कहीं करना चाहिए मुझे, और शर्मिंदा होकर मैं इसमें आया। फिर आई वॉज अशेम्ड टू सी ऑल द फॉरेन डिवोटीज, यू नो, इन 83 जब मैं विद्यार्थी था, आई वॉज अशेम्ड, अल्टीमेटली अशेम्ड कि आई एम इंडियन, आई एम ब्राह्मण, आई एम सपोज टू बी वैष्णव, मुझे भक्ति करना चाहिए मेरे जीवन में। भारत भूमिते होइलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं पहले मुझे भक्त बनना है और भक्त बन के दूसरों को अभी उद्धार करना है, परोपकार करना है, ये मेरा जन्म का कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि मुझे बताया गया किसी ने, ये मेरा बाय द वे, बाय द डिंट ऑफ माई बर्थ आई एम सपोज टू डू ऑल दिस थिंग्स, और नहीं करते, मैं नहीं करता हूँ। और जिनको नहीं करना चाहिए उनका देश संस्कृति वो नहीं है, वो मेरे देश में आके वो कर रहे हैं जो मुझे करना चाहिए। कितनी शर्म की बात है। तब मैं धीरे धीरे इसमें आया। तो मुझे भक्त बनने के लिए एक विदेशी और अनेक विदेशी भक्तों को देखना पड़ा, तब मेरे दिमाग में लाइट आया। दुर्भाग्य है कि नहीं, ये दिस इज मिसफॉर्चून। तुम्हारा खोया और तुम्हारा धन जो है, धन दौलत तुम्हारी जो है तुमने खो दी, दूसरे ने ली, फिर तुमने देखा कि उसके पास है तो फिर तुमने उसको ले ली उससे। हमको सब क्या है ना, वी वॉन्ट मेड इन अमेरिका एवरीथिंग, सो वेन इट गोज फ्रॉम हियर ओनली एंड दे पुट अ स्टैम्प देयर एंड इट कम्स फ्रॉम देयर एंड देन यू बाय इट एट अ हायर कॉस्ट। तो प्रभुपाद जी यहीं से गए थे, तुम्हारे ही थे वो, हमारे ही थे, यहीं से गए, वहाँ जाके वही बताया उन्होंने, फिर वहाँ के लोगों ने उसको अपनाया, फिर वो लोग सन्यासी बनकर यहाँ पर आए, उनको देख के हमने दंडवत किया। यही है, अभी वो लोग नंगा घूमते हम भी नंगा घूमते, है ना, वो लोग हाफ पैंट पहनते हम भी हाफ पैंट पहनते, वो लोग बाल खुले छोड़ते हम भी बाल खुले छोड़ते, उनका अंध अनुकरण करते हम लोग, ब्लाइंड फॉलोइंग। हाँ, दे वॉन्ट टू ड्रेस लाइक यू एंड यू वॉन्ट टू ड्रेस लाइक देम, एंड दे से जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें कुछ दम नहीं है, हम लोग उसको छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं और हम लोग यहाँ छोड़कर वहाँ जा रहे हैं। ब्रजवासी बोलता है कि हमें बम्बई जाना है, बम्बई के बोलते कि हमको अमरीका जाना है, अमरीका वाले बोलते हमको इंडिया आना है, और बोलते वृंदावन में आके भक्त बनना है। सोचो जरा, सोचो, सोचने की बात है, मैं यहाँ पर जोक नहीं लगा रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक यू थिंक कि हम कौन हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमको क्या करना चाहिए और लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको सबको विनती करता हूँ, आप चाहे हरे कृष्ण भक्त मत बनो, प्रॉब्लम नहीं है, बनेंगे तो भी अच्छा ही है, मैं भी बन चुका हूँ, लेकिन भक्ति को अपनाओ, भगवान की भक्ति को, क्रिश्चियन भी हो आप, मुस्लिम भी हो, अल्लाह को पुकारो, जीसस क्राइस्ट को पुकारो, बाइबल पढ़ो, वो सब धर्म का संदेश, भगवान का संदेश एक ही है, उसको ले लो जीवन में। भारत भूमि ते जन्म होइलो मनुष्य जन्म जार, उन्होंने ऐसा कहा नहीं, कहा है भारत भूमि ते हिंदू धर्म जन्म जार, ऐसा नहीं बताया उन्होंने, मनुष्य जन्म जार, जो मनुष्य बना हुआ है उसका कर्तव्य क्या है, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। यहाँ पर कहीं कृष्ण का नाम नहीं है, कहीं अल्लाह का नाम नहीं है, जीसस का नाम नहीं है, किसका नहीं, मनुष्य के लिए कहा गया है। मनुष्य का जीवन सार्थक करने के लिए भगवान की भक्ति आवश्यक है, खुद करो और दूसरों को भी करवाने दो, प्रेरणा करो कि आप भी करो हम भी करेंगे, तो हम भारतीय हैं, नहीं तो हम लोग ढोंगी हैं। वी आर ओनली हिपोक्राइट्स, फॉर नेम सेक वी थिंक दैट वी आर इंडियंस एंड वी हैव नथिंग इंडियन विद अस, वी आर टोटली मॉडर्न एंड टोटली फॉरेन, इवन हार्ट हैज बिकम फॉरेनर नाउ, we want to become like them, imitate them, huh? We want to make knuckle of them, we don't want to become Indianized and Vedic, we want to become like them, dress like them, talk like them, make hair like them, dye the hair like them, huh? Make it golden, what is this, because we want to become like them, follow them blindly, No, we have to become an example so that they want to become like you. Prabhupada never went to become like them. Prabhupada made them like him. They all became seven-headed and they all wear dhoti and kurta and they took sannyas. इसलिए प्रभुपाद जी का उदाहरण देख लो. प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैं यहाँ पर आपके पास से कुछ लेने नहीं आया हूँ, जो आप भूल गए थे उसको देने आया हूँ. इंग्लैंड में गए लास्ट, अभी ओनली वन मिनट मोर. इंग्लैंड में गए, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर क्यों आए. तो उन्होंने कहा कि 150 वर्ष आपने हमारे पर राज किया, हमारा भवानी तलवार चोरी करके ले गए आप, हमारा कोहिनूर हीरा भी चोरी करके लेके गए, हमारे देश की जो जो भी ताजा टोपे की तलवार और क्या क्या हमारा ऐतिहासिक वस्तु आपने सब चोरी किया और अपना एक म्यूजियम बनाया लंदन में और दुनिया को दिखा रहे थे हमारे पास कितना बड़ा म्यूजियम है. लेकिन बाय द वे, आपको जो चोरी करना चाहिए था वो आपने चोरी नहीं किया, वो देने के लिए मैं खुद आया हूँ. हैंड डिलीवरी, पर्सनली आई हैव कम हियर. क्योंकि हमारा धन, आपको लगा था कि तलवार है वो भवानी तलवार और वो वाला हमारा धन है, लेकिन हमारा धन वो नहीं है. हमारा धन भक्ति का धन, हमारा सबसे श्रेष्ठ है. वो आप लेने को भूल गए इसलिए वो देने को मैं पर्सनली आया हूं. अभी ले लो उसको, क्योंकि चोरी करने को भी अकल होनी चाहिए. क्या चोरी करना है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रील प्रभुपाद की उनकी असीम कृपा से हम लोग यहाँ बैठे हैं. उनका मंदिर है, उन्होंने सबको आश्रय दिया है. थैंक यू वेरी मच. आप लोग भी उनका आश्रय लीजिए. और मेरे गुरु महाराज कैसे भक्त बने और कैसे प्रभुपाद तक पहुँचे, उन्होंने किताब लिखी है जर्नी होम. वो अवेलेबल है क्या यहाँ पर? हाँ, केवल 20 कॉपी अवेलेबल है और उसकी 400 रुपये कॉस्ट थी, अभी केवल 120 रुपये में वो कॉस्ट में आपको मिल रही है ना. हॉस्पिस में हमारा जो यहाँ पर, इसके बाद में हम हमारे हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पर अपना एक सेंटर है, उसके बारे में वहाँ बताऊँगा आपको. वहाँ पर ये किताब आपको मिलेगी. हरे कृष्णा.